नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहेमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और अपने कार्यों को करते हुए परमेश्वर की वचन की संगति में बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन मित्रों का जो आज हमारे कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों नहमिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि नहमिया ने यरूशलेम की शहरपनाह जो टूट गई थी उसको 52 दिन में बनवा कर तैयार कर दिया। यद्यपि कि उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे बैरी उसके पीछे पड़े हुए थे, फिर भी उसने विजय हासिल की। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नहमिया द्वारा तैयार की गई लौटने वालों की वंशावली के अनुसार गणना। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम दूर दराज में रह करके भी आपके जीवित वचन का अध्ययन एक साथ कर पाते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता प्रदान करें, ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं अपने जीवन में हम उसे सुन करके समझ सकें और ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार से चल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह प्रदान करें, अपनी शांति, अपनी चंगाई उनके जीवन में दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इस अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं कि शहरपनाह का काम पूरा हो गया है और अब वे नगर की सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। अधिकांश घर भी बन चुके थे, परंतु नगर के भीतर अभी बहुत काम बाकी था। वे अभी तक मलवा ही हटा रहे थे। नगर की रक्षा करना आवश्यक था क्योंकि वैरी ने शहरपनाह के पुनः निर्माण का काम रोकना चाहा था और निश्चय ही वे नगर के विनाश के अभिलाषी थे। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए नहमिया की पुस्तक 7 अध्याय उसका एक पद। नहमिया की पुस्तक 7 अध्याय उसका एक पद लिखा है, जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए। ध्यान दे, शहरपनाह का काम पूरा हो जाने के बाद नहमिया ने नगर द्वारों के पल्ले लगवाए। उसके बाद उसने नगर की सुरक्षा के लिए कर्मी नियुक्त किए। द्वारपाल ही चौकसी के लिए नियुक्त किए गए थे। वे ही थे जो शहरपनाह की देखभाल करते थे। वे शहरपनाह को चारों ओर से अपनी चौकसी में रखते थे और निवासियों को बाहर की गतिविधियों की सूचना देते रहते थे। यदि किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो या वैरी दिखाई दे तो वे तुरंत खतरे की सूचना देते थे। वे दिन रात चौकसी करते थे, अर्थात 24 घंटे काम पर रहते थे। इससे उत्तरदायित्व के मानक बहुत ही ऊंचे थे। परंतु हम देखेंगे कि इन निर्धारित नियमों में से कुछ अनिवार्यता के अनुसार लागू नहीं थे। शहरपनाह के द्वारपाल प्रवेश करने वालों के प्रति उदासीन नहीं होने थे। जी हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप उसे गलत नहीं समझेंगे। आज हमसे कहा जाता है कि हम अपनी सहभागिता में आने जाने वालों की उपेक्षा न करें, क्योंकि हमें नामधारी विश्वासियों के साथ सहभागिता नहीं करना है। देखिए पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। आज यद्यपि हमें शिक्षाओं को प्राथमिकता देना है, पौलुस जब कहता है कि हमें व्यभिचारियों के साथ सहभागिता नहीं करना है, तब उसके मन में शिक्षा का विचार नहीं है। उसके मन में उस स्त्री या पुरुष को या पुरुष की छवि है जो कलीसिया का सदस्य होकर अपने जीवन में इस पाप से मुक्ति ना पाए। सहभागिता शिक्षाओं एवं मान्यताओं पर आधारित होती है। हम उनके साथ सहभागिता नहीं करते जो हमारे साथ धार्मिक शिक्षाओं पर सहमत नहीं है। परंतु पौलुस यहाँ जो कह रहा है कि सहभागिता का आधार आचरण होना चाहिए और धार्मिक शिक्षाएं भी। जी हाँ, एक प्रचारक नैतिकता के आरोप में हटाया गया, वह किसी और स्थान में गया, वहाँ भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। इस नई कलीसिया को उसके बारे में सतर्क कर दिया गया था, परंतु उसकी धार्मिक शिक्षाएं उचित थी, अतः उन्होंने उसके दोष अनदेखे किए। उसके इस आचरण के कारण कलीसिया लगभग टूट सी गई। सच तो यह है कि दो कलीसियाएं नाश हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है। जी हाँ, हम धार्मिक शिक्षा पर बल देते हैं कि वह ठीक वैसे ही हो और नैतिकता पर ध्यान नहीं देते। पौलुस कहता है कि व्यभिचारी और लोभियों के साथ सहभागिता न करें, तो वह शिक्षा के संबंध में कह रहा है। पैसों के लोभी के बारे में क्या कहेंगे? व्यवहार में जो सत्यनिष्ठ नहीं, उसके बारे में क्या कहें? क्या हम उनके साथ सहभागिता करें? परंतु दूसरी ओर हम यह भी ध्यान रखें कि एक विश्वासी भाई के साथ धार्मिक शिक्षा के आधार पर सहभागिता नहीं करने का अर्थ यह नहीं है कि हम उसका न्याय करें। पौलुस युवा प्रचारक तीमुथियुस को लिखता है, दूसरे तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 19 पद में, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। ना तो आप जानते हैं और न ही मैं जानता हूं कि कौन वास्तव में परमेश्वर की संतान है, परंतु परमेश्वर अपनों को पहचानता है। आपको और मुझे उनसे युद्ध करने के लिए नहीं बुलाया गया है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा। जी हाँ, हमें बस उनके साथ सहभागिता नहीं करनी है, हमें उनका न्याय नहीं करना है। कहने का अर्थ यह है कि विश्वासी होने के कारण हमें सतर्क रहना है। हमारा सर्वोचित नारा यह है, अनंत सतर्कता मुक्ति का मूल्य है। जी हाँ, यरूशलेम की सुरक्षा के लिए द्वारपाल नियुक्त करने के साथ ही नहमिया ने गायक दल भी नियुक्त किए। मैं उस दल में नहीं हूँ, मेरा विश्वास करें। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि नहमिया कह रहा है, प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है, स्तुति की आत्मा सामर्थ की आत्मा है। इसका अर्थ है कि हम आनंद मनाने वालों का समूह हो, परंतु आनंद प्रायः कलीसिया में नहीं पाया जाता है। कलीसिया हर्षित मनुष्यों का समूह नहीं है। ओह, एक अच्छी कहानी सुनकर आप हंसेंगे, भोज का आनंद लेंगे, परंतु बाइबल अध्ययन उनका आनंद नहीं है। यदि आप मेरे स्थान में हो जहां मैं वर्षों से हूं, तो आप इस तथ्य को कलीसिया के चेहरों पर स्पष्ट देखेंगे। कलीसिया में समस्या खड़ी करने वाले या होने वाले वे होते हैं जो बाइबल अध्ययन में रुचि नहीं रखते। इफिसियों की पत्री 5:18-19 पद में पौलुस आत्मा से भरे विश्वासियों की पहचान बताता है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। जी हाँ, मैं भाषण दे सकता हूँ परंतु गाना नहीं गा सकता, तथापि मन में जरूर गा सकता हूँ। यदि मुझ में कहीं संगीत है तो वह वही है, वह बाहर नहीं आया है। मेरा मन तो गाता है और मैं सदा यही सोचता हूँ कि मैं मुंह से गा रहा हूँ। यहाँ भजन का अर्थ है स्तुति गान। ओह, यीशु का नाम कैसा मधुर है। गीत का अर्थ है परमेश्वर को सिद्धता प्रदान करना। पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु, हमें यही गाना है। वह कैसा महान है, इससे हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। मेरे मित्रों, मैं एक संगी सेवक के अध्ययन कक्ष में बैठा था। उसका नारा दीवार पर टंगा था, आनंद मन में फहराता झंडा है जब सौम्य अपने घर में हो। परमेश्वर की इच्छा में बने रहने और उसकी सहभागिता में ही रहने से आपके जीवन में आनंद व्याप्त हो जाता है। यह कैसा अद्भुत अनुभव है। मित्रों, उस उत्तम नगर के लिए द्वारपाल और गायक नियुक्त किए गए, परंतु यही सब कुछ नहीं था। लेवियों की नियुक्ति भी की गई थी, वे मंदिर के सेवक थे। परमेश्वर सेवकों को बुलाता है। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय के 16 पद में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जी हाँ, कैसी सच्ची बात है यह। यदि परमेश्वर ने आपको सेवक होने के लिए बुलाया है तो वह आपके लिए स्थान भी बनाएगा, अर्थात वह सेवा के लिए स्थान भी तैयार करेगा। नहमिया की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों में से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। हनानी नहमिया का सगा भाई नहीं था। आपको स्मरण होगा कि जब नहमिया राजा अर्थशत्र के महल में था, तब यरूशलेम से उसका एक जाति भाई वहां आया था और उसे वहां लौटे हुए इसराइलियों का अशुभ संदेश सुनाया था। अतः वह उसका भाई अर्थात सगा भाई नहीं था। स्पष्ट है कि वह यरूशलेम के अगुओं में से एक था, जैसा हम अध्याय 1 में देखते हैं। अतः यह भी स्पष्ट है कि नहमिया उसे पहले से जानता था और यही कारण है कि वह कहता है, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया। क्या हनानी को यह पद इसलिए दिया गया था कि वह शिक्षित था और सेमिनरी से पढ़ करके आया था? क्या आपकी बाइबल में यही लिखा है? मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। उसे वह पदभार इसलिए सौंपा गया कि वह विश्वास योग्य था और परमेश्वर का भय मानता था। वह विश्वास योग्य था, शिक्षित नहीं। काश मैं यह सत्य अपने बाइबल अध्ययन के विद्यार्थियों तक, अपने मित्रों तक पहुंचा पाता। कृपया मेरी बात को आप गलत न समझें। हमें शिक्षित सेवकों की आवश्यकता है, परंतु आज सेवा में अनेक जनों का चरित्र संदिग्ध है, परंतु वे शिक्षित हैं। किसी ने कहा है, आप एक मूर्ख को भी शिक्षा दे सकते हैं। जी हाँ, यह बात सच है। आज संसार में अनेक शिक्षित मूर्ख हैं, सेवा में ही नहीं अन्य स्थानों में भी हैं। परमेश्वर जो चाहता है वह है विश्वास योग्यता। पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस कहता है, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है। क्या आपका पास्टर या आपका परमेश्वर का दास आप पर भरोसा कर सकता है? क्या आपका संगी विश्वासी आप पर भरोसा कर सकता है? क्या आप विश्वास योग्य हैं? शिक्षा का लाभ तब ही है जब आप विश्वास योग्य सिद्ध हो। यदि आप विश्वास योग्य नहीं तो शिक्षा का कोई भी मूल्य नहीं है। जी हाँ, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के भय को मानने वाले लोग हैं। नहमिया 7 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने उनसे कहा, जब तक धूप कड़ी न हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं और जब पहरवे पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। प्रत्येक नगर द्वार की चौकसी दिन में करना भी आवश्यक था। रात के समय कुछ भी हो सकता था, अतः सबको सतर्क रहने की आवश्यकता थी। कम से कम अपने घर की रखवाली तो सबको करनी ही थी। अतः परमेश्वर हमें हमारे परिवार के प्रति उत्तरदायी तो मानता ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 37 पद में, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। जी हाँ, प्रत्येक विश्वासी का यही स्वभाव होना है। नहमिया 7 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, नगर तो लंबा चौड़ा था परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। भीतरी पुनरुद्वार कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ था। यह अति संभव था कि मनुष्य अपना गृह निर्माण कार्य करने में नगर की चौकसी पर ध्यान न दे। शहरपनाह एवं नगर द्वारों के निर्माण के समय स्थिति यह थी कि कर्मी एक हाथ में कन्नी और एक हाथ में तलवार लिए हुए थे। हमें परमेश्वर के काम में आज इसकी कैसी आवश्यकता है। इस अध्याय का शेष भाग वंशावलियों का लेखा है, तो आइए हम देखें। नहमिया की पुस्तक 7 अध्याय उसके 5 से 7 पद में लिखा हुआ है, तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपने अपने वंशावली के अनुसार गिने जाएं। मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला और उसमें मैंने यूं लिखा हुआ पाया, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेज़र बंदी बना करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए, वे जरुबाबेल, येशु, नहमिया, अजरिया, रमैया, नहमानी, मोर्दकै, विलशान, मिसपेरेत, विग्गै, नहुम और बाना के संग आए। इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती यह है। जी हाँ, यह वंशावली वही है जो एज्रा की पुस्तक में दी गई है अध्याय 2 में। परमेश्वर हमें यह वंशावली दूसरी बार क्यों देना चाहता है, मैं बताता हूँ क्यों। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 112 उसके 6 में कहता है, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर कहता है, मैंने इन मनुष्यों को मान्यता दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके नाम जानो। अतः उसने उनके नाम लिखे और फिर उसकी नकल तैयार की। मुझे बताया गया कि कहीं कहीं पर तो 15 प्रतियां तैयार की जाती है। परमेश्वर के पास भी प्रतिलिपियां हैं। यह ऐसा है कि मानो परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें ये नाम रुचिकर नहीं लगते, परंतु मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, ये मेरे अपने हैं। यह वंशावली परमेश्वर की स्मरण पुस्तिका का एक पृष्ठ है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र में अन्य वंशावलियां भी हैं। उत्पत्ति 49 में 12 गोत्रों की सूची है। दूसरे शामिल की पुस्तक 23 में दाऊद के शूरवीरों की सूची है। पहला इतिहास के आरंभिक अध्यायों में भी नाम दिए गए हैं। नहमिया की पुस्तक 3 अध्याय में भी एक सूची दी गई है। रोमियों की पत्री 16 में भी नामावली है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में विश्वास के नायकों की सूची है। हमारे लिए तो वे नाम मात्र ही है, परंतु परमेश्वर उन्हें स्मरण रखता है और जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिख लेता है। नहमिया की पुस्तक 7 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अजगाद की संतान 2322। ध्यान दीजिए, यह अजगाद कौन था? यह व्यक्ति बेबीलोन की बंधुआई में ले जाया गया था। वहां के 70 वर्ष और कुछ वर्ष अधिक उसका कुटुंब बढ़ गया था। उनकी संख्या 2322 थी। उनमें से हर एक जन कह सकता था, मैं अजगाद का वंशज हूँ। यदि किसी को चुनौती दी जाती कि वह अपने आप को इसराइली सिद्ध करे, तो वह कह सकता था, अजगाद मेरा पूर्वज था, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। आज कुछ विश्वासी कहते हैं, मेरे विचार में मैं परमेश्वर की संतान हूँ और आशा करता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मेरे मित्रों, आप तो निश्चित जान सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में स्पष्ट लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपके पास वह पुत्र है और आपके पास जीवन भी है। यदि आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, तो आप उसे झूठा ठहराते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो परमेश्वर के वचन के अधिकार द्वारा आपके पास जीवन है। परमेश्वर ने यह लिख दिया है, अजगाद के वंशज कहने योग्य थे, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, देखो मेरा नाम यहाँ लिखा है। नहमिया 7 उसके 61 पद में हम पढ़ते हैं, वे ये हैं जो तेलमेलह, तेलहरसा, करूब, अदोन और इमेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि इसराइल के हैं या नहीं। वहां ऐसे मनुष्य भी थे जो अपने इसराइली वंशावली को सिद्ध नहीं कर पाते थे। वे कहते थे, हम भी शायद इसराइली हैं। यही हमारी आशा है और हम कोशिश भी करते हैं। सोचने से, आशा करने से और प्रयास करने से भी वे इसराइली नहीं हुए। उन्हें स्पष्ट जानना था कि वे कौन हैं। वंशावली सिद्ध किए बिना उन्हें बहिष्कृत किया गया। नहमिया 7 अध्याय उसके 64 पद में हम पढ़ते हैं, इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा परंतु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहर कर याजक पद से निकाले गए। वे अपनी वंशावली प्रकट नहीं कर पाए। आपको उधार पाना ही नहीं है, आपको उन्हें या उसे जानना भी है। नहमिया 7 अध्याय उसके 65 पद में लिखा है, और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाला कोई याजक न उठे, तब तक तुम कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाओगे। ध्यान दीजिए, उस युग में उरीम और तुमीम धारण करने पर ही याजक स्वीकार्य होता था। यह पत्थर उसके वस्त्र के वक्ष में रखे होते थे। इन्हीं के द्वारा महायाजक परमेश्वर की इच्छा जान पाता था। उस युग में परमेश्वर की इच्छा जानने का यही मार्ग था, परंतु आज हम परमेश्वर का वचन पढ़कर उसकी इच्छा जानते हैं और उसमें अनंत जीवन का मार्ग व्यक्त है। नहमिया की पुस्तक 7 अध्याय उसके 73 पद में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार याजक, लेविये, द्वारपाल, गवाये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इसराइली अपने अपने नगर में बस गए। मित्रों, यह अध्याय का अंतिम पद है और इसराइली अपने देश में हैं। नहमिया की अगुवाई में एक महान कार्य पूरा हुआ, परंतु अभी काम बचा हुआ था, अभी बहुत कुछ करना था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को भली भांति सीखते और जानते हैं कि नहमिया के कार्य के द्वारा इन लोगों ने अपने नगर को बसा लिया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी अपने आत्मिक नगर में उसके पास आ जाएं, अपने नगर को बसा लें, परमेश्वर के वचन को आने दें, ताकि हम सब अपने जीवन की गवाही दे सकें और कहने पाएं कि मैं भी इस नगर का वासी हूँ। प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। आइए हम सब परमेश्वर के हाथों में अर्पित हों और प्रभु से कहें कि हमें भी अपने नगर, अपने राज्य का वासी बना। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे एवं सहायता प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सारे जहां में तुझसे